लिया है। तो कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी ने कहा यज्ञ बंद कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। यज्ञ का फल तो आ गया। यज्ञ का फल क्या है? साधुओं का संग। यदि साधुओं की कृपा हो गई तो समझो जैसे भगवान मिल गया, और कोई संत मिल जाए तो ऐसा समझो ये भगवान की कृपा का फल है। अब हमारा संसार से उद्धार होने वाला है, ऐसे संत मिल गए तो। इसलिए जितने प्रकार के साधन हैं उन साधनों में कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संतों का संग प्रधान है, बाकी सब कुछ वो करा लेंगे। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि अब कुछ हरि कथा हमें सुनाए, तो उन्होंने आरंभ कर दिया नवजोगेंद्र का उपाख्यान का। नवजोगेंद्र का उपाख्यान किसके बीच में? महाराज जनक। और नवजोगेंद्र माने कभी हवि अंतरक्ष पत्पलायन प्रबुद्ध इत्यादि, भरत महाराज जी के छोटे भैया लोग। उनकी कोई जाति नहीं, जाति से ऊपर उठ गए हैं, सब प्रकार से भक्तिमान हैं, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हैं। उन्होंने जो बतलाया उनको उपदेश दिया नारद जी ने, और नवजोगेंद्र ने राजा जनक जी को बतलाया, उसका सार उन्होंने बतलाया हरि नाम। हरि नाम को भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। यदि आप जगत में कुछ भी नहीं किया और केवल हरि नाम किया किंतु सदाचार के साथ में, ऐसे साधारण रूप में नहीं, सदाचार के संपन्न होकर के भगवान नाम करना चाहिए, पापों से दूर रह करके, नमापराध से दूर रह करके, इन सब से रह करके यदि करेंगे तो कलयुग में कलयुग केवल नाम धारा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरंजन। इसलिए श्रीमद्भागवत में वहां पर बतलाया गया है लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपी हधीर तूर्णम जतेत न पतेत अनुमित्तु जावत निशेषाय विषा खलु सर्वतः स्यात्। खूब सावधानी से सुनेंगे, पार्वती जी को यहीं पर नींद आ गई। ये जहां कथा आरंभ किया तत्व की बात, वो जब सुना रहे हैं उनकी कथा भस्मासुर की, तो जग गई। महाभारत का युद्ध जब होने लगा तो उसमें जग गई, किंतु जब गूढ़ रहस्य की बातें आई समझने सोचने के लिए करने के लिए जो कैसे करना चाहिए, यहां तत्व का ज्ञान हुआ आरंभ, यही श्लोक आरंभ हुआ लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान। लब्ध्वा सुनते ही आलस्य आया, ऐसे किया, दो चार आलस्य मन, उसकी बहन उसके लड़के पोते सब चले आए। वो पोते क्या है? आंखों में इतना भार हो जाएगा पलकें ये उसको रोक नहीं सकेंगे, उसमें आलस्य आएगा, उसका भैया प्रमाद आ जाएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे करने की इच्छा होगी, कभी ऐसे करने की इच्छा होगी, दो चार आज जम भाई आए, इतने में निद्रा जी आ गई उसकी मैया और आकर के आपको पकड़ लेगी आपको, जैसे पार्वती जी से होता, पार्वती जैसा लोग लब्ध्वा सुदुर्लभ। इसलिए खूब सावधानी से 2 मिनट 4 मिनट तक के लिए एकदम साध लीजिए तो जब सोएंगे नहीं। यदि यही अमृत है, इस अमृत से वंचित मत होइए। तो बतला रहे हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान। देखो विषय खलु सर्वतः क्या, ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसा कोई जन्म नहीं है जहां पर स्त्री और पुरुष न मिलते हों। शुकर को शुकरी जुट जाती है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है विवाह में, अनायास ही डोलते डोलते शुकर शुकरी मिल जाती है, कुत्ता को कुतिया भी, कुतिया को कुत्ता भी मिल जाते हैं, गधे को गधी भी, गधी को गधा। यहां तक कि सर्प बालू भालू बाघ जितने भी जीव हैं, देवता तक लो गंधर्व तक लो, भगवान ने ऐसी ही सृष्टि की है। विषय खलु सर्वतस्त सब जगह अभी नहीं मिलेगा तो हम विषय भी पालेंगे। वो विषय चार है, क्या? आहार। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें वो नहीं खाता है कुछ। मनुष्य खाते हैं, गोधे की भैंस खाते हैं, सुअर भी खाती है, और अपने अपने खानों में सबको ही एक टेस्ट होता है। शुकर को हलवा महन भोग जो यहाँ पर प्रसाद बढ़ता है, शुकर कह दे दो और एक बच्चे ने टट्टी कर दी तो वो कौन सा खाएगी? टट्टी खाएगी, ये नहीं खाएगी। बबले के पेड़ में कांटा होता है बबुल का, ऊंट को छोड़ दो और राबड़ी महान भोग इत्यादि रख दो तो वो क्या खाएगा? वो कांटा खाएगा और उसी में उसको तृप्ति होगी। उसके दांत में ही मुख में वो चुभेगा, उसमें रक्त गरम गरम नमकीन आएगा, वाह वाह कितना सुंदर है। इसमें कुत्ते को खूब अच्छी चीजें खाने के दो और एक हड्डी पड़ी हुई है सूखी, वो किसको खाएगा? हड्डी। क्यों? रस उसमें तो है नहीं, खा करके अपने ही मुख से रस निकलेगा, रस माने वो रक्त इत्यादि, और वो कट जाएगा मुख और उसी को अच्छा। इसलिए ऐसी कोई भी योनि नहीं है जहां पर कि आहार भोजन नहीं मिलता। हम लोग को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उन लोगों को परिश्रम नहीं करना पड़ता। निद्रा, ऐसा कोई प्राणी है जो सोता नहीं? और जितेंद्रिय व्यक्ति है जो अपने इंद्रियों को जीता नहीं है तो वो उसका दो काम है प्रधान, खाना सोना और फिर खाना फिर सोना, यही दो काम। रावण के राज्य में यही होता था, खाना और सोना। ऐसा कोई प्राणी है जिसको नींद नहीं आती? हम लोगों को तो गोली खानी पड़ती है। लड़की की शादी है, चार पांच दिन के बाद में 10 लाख रुपए अभी चाहिए, नींद आएगी? नहीं आएगी। घर में पति देव खूब बीमार पड़े हैं, नींद आएगी? बच्चा एकदम बीमार पड़ा है, नींद आएगी? कितनी तरह की समस्याएं, नींद नहीं आती ने? गोली खा लेते हैं एक दो, यदि कुछ बढ़ जाए मात्रा तो बस सोते ही रह गए, फिर उठेंगे भी नहीं। किंतु कुत्ते को सोने में परिश्रम लगता है, गद्दा चाहिए। सुअर महारानी को चाहिए गद्दा, कहाँ सोएगी? जहाँ पानी और गंदा नाला मिल गया बस बड़े प्रेम के साथ में, मानो गंगा से भी तीर्थ पड़ा है उसमें स्नान कर रही है, दुखी ले रही है, तो उनको यही अच्छा लगता है। ये सब चीजें उपलब्ध हैं उन लोगों को, चाहे कोई भी प्राणी हो। तो आहार, निद्रा और डर, हम लोग को भी डर है। एक सांप को देख करके डर जाते हैं, ऐसा कोई प्राणी है जो सांप को देख करके नहीं डरता? सब लोग एकदम, बस एक मयूर है, मोर जो सांप को खा जाता है और मयूर दूसरे से डरता है। सब एक दूसरे के प्राण के लाले पड़े हैं सब में, सभी लोग मृत्यु के लिए डरते हैं, देवता तक भी लोग। और बच्चे इत्यादि का होना, स्त्री इत्यादि के साथ में रह करके बच्चों का पालन पोषण करना, ऐसा कोई है जो अपने बच्चे को पालन पोषण नहीं करता? उसके बच्चे नहीं होते? हाँ, एक विशेषता है, हम लोगों को बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लड़के नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से यदि हो तो एक दो लड़के हैं। सुअर महारानी को देखिए, जैसे एक साथ में 16 बच्चे पैदा करती है, और वर्ष में जितने कितने बच्चे पैदा होते हैं है? कोई भी कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट भी नहीं है वहां। इसलिए ये सब चीजें मरने के बाद किसी जन्म भी जोने में जाएंगे, ये सब चीजें मिल जाएंगी। इस जन्म में भाई देखो, समझ समझ करके विषय भोग पड़े हैं दूसरे जन्मों के, इस जन्म में मनुष्य जन्म में ये मत करो। क्या करो? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्, कोटि कोटि जन्मों के बाद में, करोड़ों जन्मों के बाद में ये मनुष्य जन्म मिला है। बहु संभवान्ते माने बहुत जन्मों के बाद। हम कहेंगे, कोई नास्तिक कहेगा, इसकी क्या गारंटी है कि हम कोटि कोटि जन्मों के बाद में आए हैं? क्या गारंटी है? हम इस चीज को नहीं मानते। हम तो सीधे पहली बार आए हैं और ये भोगों को भोग रहे हैं, मर जाएंगे, शरीर चला जाएगा, फिर कोई इस जगत में नहीं आने वाला है, बस यही पहला और अंतिम जन्म है। इसलिए खूब कमाओ खाओ, ईट ड्रिंक एंड बी डेरी, खूब आराम से रहो। कहते हैं कि भैया इसको विचार करो खूब अच्छी तरह से, एक लड़का अंधा क्यों हो गया, एक लड़का जन्म से ही क्यों अंधा हो गया, एक बिड़ला के घर में जन्म लिया एक लड़का और एक दरिद्र के घर में लिया, क्यों? उसने तो इस जन्म में तो कर्म नहीं किया, तो कर्म के पहले ये कैसे ऐसे हो गया, इस पर विचार करना है। एक बात और है, एक आदमी ने हमारे गुरु जी से पूछा, हम लोग उनके साथ में गुरु जी के साथ में जा रहे थे कलकत्ते मथुरा से, तो एक आदमी मिल गया, तो उसने गुरु जी से पूछा, कहा भगवान क्या है, इसका प्रमाण क्या है? तो गुरु जी ने कहा बात बात बहुत ठीक कहता है, ये युक्ति की बात है, तो एक छोटी सी बात मैं तुमसे पूछूंगा, तुम बिगड़ना मत, तुम बतलाओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो पिताजी का नाम कोई प्रमाण दो जिससे कि ये मालूम पड़े जैसे ये पिताजी तुम्हारे पिताजी हैं, कोई भी प्रमाण दो, भगवान को हम पीछे हम प्रमाण कर देंगे, तुम बतलाओ ये तुम्हारे पिता ये हैं, इसका कोई प्रमाण है? तो बहुत सोचने लगा, सोच करके कोई उत्तर नहीं आया, तो बोला ये मेरी मैया ने कहा। अरे मैया यदि झूठ बोलती है तो, मैया पर तुम विश्वास करता है तो हाँ करता हूं, तो विश्वास की बात आई। तो तुम ये विचार करो जो तुमने देखा नहीं जन्म के पहले, ये कौन तुम्हारे पिता हैं, और मैया झूठ बोल रही है कि नहीं, इसके लिए भी तुम कोई प्रमाण अपनी मैया से नहीं मांगता, मैया देगी कोई प्रमाण? जैसे ये तुम ही, ये हमारे पति से ही तुम पैदा हुआ है, प्रमाण कोई देगा? हम जो कह रहे हैं इसको मानो, यदि तू हमारा पुत्र है। उसी प्रकार से संत महात्मा लोग वेद उपनिषद श्रुति ये कहती है ये भगवान हैं, हम उसी से निकले हैं, इसलिए इसको मानना चाहिए। मैया के स्थान पर मैया झूठ बोल सकती है, श्रुति वेद उपनिषद ये झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए करोड़ों करोड़ों बार हमारा जन्म हुआ है, किंतु कभी भी भगवान को भजन करके इसे मुक्त नहीं हो सके। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इस जन्म में ये अर्थ को दे सकता है, अर्थ माने क्या? परमार्थ को, माने ये संसार में ये दुख कष्ट मृत्यु का ये जो सिलसिला चल रहा है, इस मनुष्य जन्म में हम इसे पार पा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। किंतु ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ होता हुआ भी कोई ठीक नहीं ये कब चला जाएगा, क्षण भंगुर। महाराज परीक्षित 7 दिन तक बचे थे, 7 दिन के अंदर में कोई, यानी ये गारंटी है ये 7 दिन के अंदर में नहीं मरेंगे, 7 दिन के बाद नहीं मरेंगे, और बच भी सकते हैं, हो भी सकता है, किंतु 7 दिन के अंदर नहीं मरेंगे। हम लोगों का कोई गारंटी दे करके खड़े होकर के उठ करके कह सकता है जो हम लोग 7 दिन तक बचे रहेंगे या कल बचे रहेंगे? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ होने पर मिला, और इसमें भगवान का भजन किया जा सकता है, बैठ करके हरि कथा सुन सकते हैं, गधे घोड़े ये सब नहीं सुन सकते, यहां तक कि देवता लोग भी नहीं आ सकते। और की तो बात क्या, आप लोगों के समाज में बहुत जो धनी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, इनका समाज में बहुत आदर है, कोई उसमें से आया है? नहीं आएंगे। कंजा इन साधारण लोगों में मैं क्या बैठू? एक मंत्री आकर के, जो साधारण आप ही लोगों ने चुना, साधारण एक व्यक्ति, और इसमें आकर के चुपचाप बैठ करके सुनेंगे बड़े प्रेम के साथ में, ये कभी संभव नहीं है। तो इसलिए कहते हैं लब्धासु दुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपिह, ये अनित्य भी है साथ साथ अर्थ को देने वाला है। अरे अधिक की तो बात क्या, एक क्षण भी भगवान का स्मरण किया जाए तो भौतिक सागर से ये पार हो जाए, जन्म मृत्यु से पार हो जाएगा, एक क्षण का भी समय मिले। एक राजा थे, वो देवताओं के साथ में असुरों के युद्ध में देवताओं का पक्ष लेकर के गए, और देवताओं को उन्होंने हराया। क्या नाम था? खटांग ऋषि। वहां पर गए, सूर्यवंशी राजा थे, रामचंद्र जी के वंश में पहले। देवताओं असुरों को परास्त किया और बोले, देवताओं ने कहा जी आप कुछ लीजिए इसके बदले, अच्छा एक बात करो, हमको मुक्ति संसार से दे दो, ये तो हम नहीं दे सकते, तो और हमको कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम और मुक्ति हमें दे दो संसार से, ये नहीं दे, अच्छा ये बताओ जी मेरी आयु कितनी है? अब 24 मिनट है केवल। अच्छा तुम जल्दी से हमको पृथ्वी लोक में, विशेष करके वृंदावन धाम के निकट कहीं हमको जल्दी से उतारो, यमुना के किनारे, गंगा के किनारे। बस साथ ही साथ उतार दिया, और साथ ही साथ उन्होंने चित्त लगाया भगवान ने और कहने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ऊपर से विमान उतरा और उनको लेकर के बैठ गया। एक दो मिनट की ही बात, लाखों इसके प्रमाण हैं, एक दो नहीं। इसलिए कहते हैं, तूर्णम जतेत न पतेत मित्सु अनुमित्सु जावत। जब तक ये शरीर पतन नहीं हो जाता, जब तक कि भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, काया दी है, इसमें बल दिया है, दो सुंदर सुंदर आंखें दी हैं, सुंदर सुंदर कान दिए हैं, कान भी पूरी तरह से सुन रहे हैं, आंखें भी देख रही हैं, नाक दिया उसे सुगंध ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं वो भी ठीक से चल रही है, पैर हाथ सब कुछ ठीक है। अरे भाई तब तक तुम मर नहीं जाता, तब तक ये मिले हुए, इसी के बीच में तुम भगवान का भजन करके चले जाओ, अपना कल्याण कर लो, एक मिनट के लिए अपनी इधर उधर मत दो। यदि कहो जैसे हमको संसारिक भोग भोगना है, तो ये मनुष्य जन्म के बाद में किस जन्म में भी जन्म लेगा तो वो तो तुमको मिल ही जाएगा, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति ये तो मिल जाएगी। इस मनुष्य जन्म में तुम केवल मात्र भगवान का भजन करके तो इस जगत से चले जाओ। कैसे कल्याण होगा? उत्तम श्रेय किसको कहते हैं? कैसे जीव का कल्याण होगा? इसके लिए बतलाया, इसको उन्होंने एक श्लोक बतलाया, सुनन सुभद्राणी रथंग पाणी जन्मानि कर्मानि च जानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्ज विचरेत असंग। संक्षेप में बतलाया, यदि कल्याण करने की इच्छा हो, खाओ पियो सब कुछ करो, संसार में रहो, अनासक्त होकर के विचरेत असंग। असंग माने क्या? आसक्ति मत रखो कर्तव्य के लिए। ये समझो कि ये जितने भी हैं हमारे परिवार के लोग, ये कृष्ण के दास दासी हैं, मैं भी कृष्ण का दास दास हूं, इसके नाते हम उनका कृष्ण की ही व्यवस्था से उनका पालन पोषण जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं। किंतु हमको इसमें क्या करना है? एक समय मैंने किसी से पूछा, अच्छा भाई तुम इतना परिश्रम करके नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यवसाय किस लिए करते हो? तो रुपये के। रुपया क्या होगा किसके लिए? तो अच्छी तरह से खाएंगे मौज करेंगे। अच्छा मान लिया कि तुम नहीं खाया तो क्या होगा? तो मर जाएंगे। तो खाता किस लिए है? तो जब मर न जाए। कपड़े किस लिए पहनता है? तो इसलिए कि मर न जाए, ठंडा न लग जाए। तुम जीवित किस लिए रहना चाहते हो? ताजा मैंने आज तक जीवन में सोचा नहीं कि किस लिए हमको जीवित रहना है। इस पर विचार करो। मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है, थोड़े दिनों के लिए दिया है, किस लिए दिया है, कैसे हमारा कल्याण होगा? ये मनुष्य जन्म में होगा, फिर कहीं नहीं होगा। स्वर्ग में जाएंगे वहां पर भी नहीं होगा, इतना सुख आराम मिलेगा जो नहीं है, किसी भी दूसरी योनि में नहीं होगा। इसलिए तूर्णम जते इतना पते तो अनुमित सुजावत। जब तक शरीर का पतन नहीं हो जाता, इसी के बीच में अपना कल्याण कर लो। नहीं अभी मैं नहीं करूंगा, क्यों? मुझे 40,000 रुपया महीना मिल रहा है, अपनी नौकरी कर लूं इसके बाद। आज बेटा तुम कल मर जाएगा तो तू नौकरी करो, ये भी कर दो, इसके बाद में देखा जाए। नहीं हमको फुर्सत नहीं है, दिन भर उसे में लगा रहते, फिर क्या होगा अंत में? उसका एक काना कौड़ी भी लेकर के साथ में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। एक आदमी ने संसार में जो कुछ भी चीजें हैं सबको संग्रह किया, करोड़ों रुपए उसके अरब खरब हो गए, उसने स्विट्जरलैंड के बैंक में 85 अरब या कितना भी रुपया जमा कर दिया और उसने काफी जमीन जायदाद ली और एक मोटर कार की कंपनी बना दी अपनी, जिसमें लाखों करोड़ रुपए रोज की आमदनी है। और भी उसके घर में बच्चे इत्यादि सब हैं परे पूर्ण रूप। इतने में एक संत आया और बोला, अच्छा ये बतलाओ अब तुम्हारी मृत्यु 5 दिन में होने वाली है, जरूर होगी मैं जानता हूं, मैं यही रहता हूं, देखो ये 7 दिन में 5 दिन में तुम्हारी मृत्यु होती है कि मुझको क्या करना चाहिए। तो तुम ऐसा करो, तुम ही बतलाओ कि तुमने इतना परिश्रम करके इतना रुपया पैसा धन संपत्ति और ये सब किया, तुम राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हो, बड़े बड़े फोर्ड कंपनी के मालिक रह चुके हैं, अब तुम ये तुम्हारे पास में तो काफी रुपया पैसा है, कहां जाने के समय में तुम्हारा स्वर्गलोक में जाना है, किंतु वहां एक सुई धागा ले जाना है, कोई जरूरत है, सुई धागा लेकर के जा सकते हैं ये नहीं। अरे सुई धागा यदि लेकर के नहीं जा सकते तो इतना संपत्ति जो इतना परिश्रम से कमाया है किस लिए पूछो, एक सेकंड के लिए जीवन दान करेगा वो नहीं करेगा, किस लिए कर रहे, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए तूर्णम जते, इसलिए जल्दी से यत्न करो कि मैं भव सागर को पार होकर के कृष्ण की सेवा कर सकूं, जीव का स्वरूप यही है कृष्ण का दासत्व करना, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है जीवों के लिए अपना धर्म, इसलिए ये मनुष्य जीवन रहते ही इसको करना चाहिए। इसके लिए हमको क्या त्याग करना पड़ेगा, एक पैसा भी नहीं तुम्हारे कमाई का, वो सब तुम खाओ पियो, जो हम कहते हैं वो करो, तुम्हारा जैसा जो कुछ है बना रहे, हमको उसमें से एक पैसा नहीं चाहिए। तुम हरे नाम करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अयो केवलम कलौ नास्ते वो नास्ते। हरे नाम किसको कहते हैं, हरे नाम किसको कहते हैं, अच्छा हमारे साथ में बोलो, मैं आगे कहूंगा तुम पीछे कहना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी को कहते हैं महामंत्र। और सब मंत्र हैं, कलयुग का सबसे बड़ा प्रभावशाली, जो कभी भी इसका प्रभाव नहीं क्षीण हो सकता है, कुछ जरूर जरूर ये प्रभाव डालेगा यदि कोई ये व्यक्ति करे, कोई कुछ भी ना करे, उसी को कृष्णचंद्र जी बतला रहे हैं, किसको, उद्धव जी को भागवत में। मैंने तो अपने शब्द में कहा कि इसके श्लोक सब जितने हैं ना सब इसके ऊपर में है, जो कुछ मैंने कहा ये भागवत के श्लोकों का तात्पर्य बतलाया। द्वारकापुरी की बात है, जानते हैं कि द्वारकापुरी के पास ही में समुद्र है, प्रभास भी वहीं पर है, प्रभास एक पुण्य तीर्थ माना जाता है, उसी के किनारे बहुत से ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसमें नारद जी हैं, उसी में दुर्वासा ऋषि हैं, उसमें और उस समय के जितने बड़े बड़े ऋषि थे, कृष्ण का दर्शन भी करेंगे और साथ साथ में आराधना भी होगी। कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर में नहीं आएगा, इसलिए द्वारका से थोड़ी ही दूर पर नारद जी जैसे बड़े बड़े अनुभवी ब्रह्मवेत्ता ऋषि लोग, जो किसी को कह दें अभी मर जाए तो मर जाए, अभी तुम्हारी मुक्ति हो जाए, अभी जी जाओ, ऐसे लोग ब्रह्मर्षि लोग वहां पर हैं, आराधना कर रहे थे। इतने में कुछ मन चले द्वारका के राजपुत्र लोग, कौन राजपुत्र, सांबजी। सांबजी इतने ब्यूटीफुल थे, इतने सुंदर थे, उनको स्त्रियों जैसा लहंगा और चुनरी पहना जाने पर सभी लोग सोचेंगे कि ये बड़ी किशोरी लड़की है, एकदम बड़ी सुंदरी, और उसको देख करके कोई भी पुरुष मुग्ध हो सकता था। बड़े गौर वर्ण के, बड़े कोमल सी अंग, कृष्ण के जितने भी पुत्र और नाती हैं सब में सुंदर ये सांब था। बच्चों ने क्या किया, खेल ही खेल में उसके पेट के ऊपर में तवा बांध दिया, पेट ऊंचा कर दिया और कपड़े से बांध दिए, और उसको चुंदरी और लहंगा पहना करके उसको चुंदरी को जरा ढक दिया, घूंघट निकाल दिया और बच्चों के साथ लेकर के सब बच्चे उनके साथ में गए यदुकुल के समुद्र के किनारे जहां पर के ऋषि महर्षि लोग थे उनके पास में चले गए। बड़ी लजाती धीरे धीरे जैसे स्त्रियां चलती हैं नवविवाहिता ऐसे धीरे धीरे उसको ले जा रहे थे चल रही उनके सामने गए। पूछा ये बड़ी सुखचा रही है घर की बधू है अभी हाल ही में इसकी शादी हुई है और इसको गर्भ हुआ है ने? ये घुघुट नहीं निकालती नहीं उठाती आप इसको बतला दीजिए इसको बच्चा बेटा होगा ना बेटी होगी। आजकल पहले से जानने के लिए मशीनें चल लग रही हैं शायद यदि लड़की है तो इसको वहीं पर समाप्त कर दो लड़का है तो ठीक है। अरे लड़कियां बेटी से बात बेटा से करेंगी बेटे तो जन्म से ही कुछ न कुछ आदेश करेंगे विवाह होने के बाद में भी चले जाएंगे लड़कियां रहेंगे तो कुछ आदर करेंगी मैया का सब प्रकार से सहायता सेवा करेंगी बाप की भी वो बात कुछ नहीं। तो आजकल ऐसी ऐसी सब चीजें निकली हैं वैज्ञानिक और साइंटिफिक चीजें जो पहले से गर्भ को देख लें बेटा है कि बेटी है ना क्या है और उसमें जरूरत यदि हो तो बेटे को या बेटी को भी मार दो उसी में। इसको हत्या इत्यादि नहीं मान रहे आजकल है बहुत बड़ी भारी हत्या। तो वो लोग जाकर के उसे दिल लगी करने लगे जैसे आजकल हम लोगों से बंगाल में हम जाए तो ऐसे ही कहते हैं जैसे ये बात बंगाल में इतना नास्तिकपन आ गया है विशेष करके ज्योति के नाम पर अंधकार है वहां वहां के मुख्यमंत्री कौन है वो ज्योति नहीं बल्कि अज्योति धर्म से उनका कोई भी संबंध नहीं अपनी संस्कृति से कोई संबंध नहीं सत्य से कोई भी संबंध नहीं सब लोग नास्तिक हो जाएं गाय भैल सुअर सभी खाएं कोई भी बात नहीं विवाह की प्रथा उठा दो जब इसके साथ में रह लिया फिर दूसरे के साथ में रह लिया इसमें क्या बुराई है यदि जानवर ऐसे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते और स्त्रियां इतनी स्वतंत्र जो एक के पास में रहेंगी ये तो बड़ी बुरी बात है स्त्रियों को स्वाधीनता मिलनी चाहिए जैसे पुरुषों को स्वाधीनता है। तो ठीक है इसके साथ में ऐसा भी यदि उनकी चलती तो कर दे जैसे पुरुष लोग ही गर्भ धारण करें स्त्रियां गर्भ धारण ही नहीं करें किंतु ये सब तो चीजें होगी नहीं। तो इस तरह से साधुओं को तंग करने की कुछ लोगों की होती है यही कुछ जानते तो हैं पढ़े लिखे तो हैं नहीं इसलिए ऐसा समझते हैं और तंग करने की लालसा रखते हैं। आप लोग अभी हरिनाम करने लग जाए ना अभी हरिनाम की माला लेकर समाज के जितने अच्छे लोग हैं सब चिढ़ जाएंगे कहीं हरिनाम की माला लेकर के कर देंगे सब लोग तंग करेंगे और यदि सिनेमा बाइस को जाएं गंदी आंखों में जाएं नाइट क्लबों में जाएं तो ताली बजे वाह 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 ये बहुत अच्छी बात है। नाइट क्लब मैंने क्या एक स्त्री दूसरे पति के साथ में दूसरा पति दूसरे के साथ में बस शराब पी लिया और ऐसे करते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात। तो उन्होंने सोचा जैसे ऐसे ही कोई साधारण महात्मा लोग होंगे जो पेट पालने के लिए साधु संन्यासी मूड मरे भय संन्यासी स्त्री मर गई तो उन्होंने देखा जैसे कोई अब घर तो चलने वाला है नहीं और घर में चूहे भी नहीं रहते क्यों नहीं रहते घर में चूहे क्यों नहीं अनाज ही नहीं खाने के लिए तो रहेगा कहाँ चूहा और वर्षा जितनी होती है वर्षा की एक बूंद भी बाहर नहीं जाती क्यों नहीं जाती छप्पर टूटा हुआ है वो सब उसी में आता है। स्त्री कैसी है बड़ी रूपी काली कलूठी वाणी कैसी कौवे जैसी और पति को रोज झाड़ू देती है पीठ पर खाने का भी कुछ नहीं है तभी विरक्ति नहीं होती ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो वो बतला रहे हैं साधु संतों को ऐसा ही समझा ये भजन का बल नहीं है कुछ जानते नहीं है बार बार तंग कर रहे हैं अरे बताइए महाराज जी बड़ी श्रद्धा से आई है और हम लोग भी आए हैं इसकी जानने की इच्छा हो रही है ये बेटा होगा कि बेटी होगी। तो दुर्वासा जी उसमें से निकले क्या पूछता है स्वामी जी ये बेटा होगा कि बेटी तो ये बेटा बेटी नहीं होगा कुल का नष्ट करने वाला ये मूसल पैदा होगा इतना कहा तो उनको डर लग गया वहां से भगे देखा जी ये तो महाक्रोधी ये अपनी शर्मा जी हैं ये दुर्वासा जी और इसकी बातें सभी ठीक होती हैं। बस वहां से भगे, भग करके थोड़ी दूर जब आए तो देखा जी इसका पेट अब खोल देना चाहिए। तो पेट खोला तो देखा जी सचमुच तवा के नीचे, कपड़ों के नीचे एक इतना मूसल शाम लगा हुआ लोहे का। अब क्या किया जाए? उग्रसेन जी के यहां पहुंचे, कृष्ण के पास में नहीं गए, उग्रसेन के पास में पहुंचे। उग्रसेन जी से कहा जैसे ऐसे ऐसी बात हुई, अरे ये तो कुल का ध्वंस अब होने वाला है, अब ये कुल बचेगा नहीं, ऋषियों को तुमने तंग किया, अच्छा ऐसा बात करो इसको तो जला दो ये मुसल के लकड़ी को, और जो लोहे वाला साम जो चारों तरफ से है उसको घीच घीच करके एकदम धूल बना दो, और समुद्र में बीच में जहाज में ले जाकर के छोड़ देना, ये ठीक है। ऐसा ही उग्रसेन ने अपने आदमियों के द्वारा मुसल को जलवा दिया, और जो रहा लोहा उसको घिसवा दिया, जब चूर्ण एकदम हो गया तो समुद्र में ले करके बहुत दूर नौका में बैठ करके उसको फेंकवा दिया। समुद्र कुछ लेता नहीं है ने? वो आज नगद कल उधार की बात नहीं जानता, जो कुछ दो वो लौटा देता है, कोई भी चीज दे दो आदमी उसमें जाए आदमी को ले लेगा, फिर आध घंटे के बाद में 15 मिनट के बाद में उसका सार ले लेगा और शरीर को छोड़ देगा। पूरी में और सब जगहों में हम लोगों ने देखा, घाट पर बैठे हैं कोई और इस समय समुद्र की लहर आई और उनको ऐसे लुढ़का दिया और लेकर के भीतर ले गया, फिर वहां से कुछ देर के बाद में निष्प्राण उनको छोड़ दिया, अब कोई मतलब नहीं। इस तरह से उन्होंने भीतर में दे दिया, वो उसकी चूर्णें समुद्र की लहरियों पर खेलते खेलते सीध जमीन में आ गई, और वहां पर बड़ा भारी वन एक हो गया जिसमें कि सरकंडे हो गए, और इधर में उस बाकी जो बच रहा था उसको एक मछली निकल गई जो घिसा नहीं जा सका। यहां तक तो ये हो गई, ब्रज में बड़े उत्पात वहां पर उत्पात होने लगे। उसी समय में कृष्ण जी चिंता कर रहे हैं, अब हमको ये लीला संवरण करना है, हमने कौरव पांडवों के युद्ध में जितने आतताई जितने स्त्रियों पर दुर्व्यवहार करने वाले थे, जितने नास्तिक थे जितने अधार्मिक थे, जदा जदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत, ये सबको हमने शांत कर दिया, किंतु हमारा जदकुल अभी तक बचा हुआ है, हमारे जाने के बाद में ये कहीं विश्व को नष्ट न कर दे, इसलिए कांटे के द्वारा कांटा निकाल करके कांटे को भी फेंकना है, किस उपाय से फेंके इस प्रकार से व्यवस्था करके सोच रहे हैं। इतने में उद्धव आ गए, उद्धव ने देखा जाए कृष्ण बड़े गंभीर हैं, उसी समय मैत्रेय ऋषि जी आ गए, उन दोनों को लक्ष्य करके कृष्ण ने उनको ऐसा आभास दिया कि अब मैं जगत में नहीं रहता और हमारे जितने परिकर हैं बैकुंठ वाले इनको किसी न किसी हालत में वहां पर ले जाना है, लड़ाई का कुछ भान दिखला करके और सशरीर वहां पर पहुंचा दूंगा, अब मैं ही सशरीर बैकुंठ के ऊपर मैं गोलोक वृंदावन में चला जाऊंगा। उसी समय में उद्धव जी को लक्ष्य करके कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं वो श्रीमद्भागवत की मणियां हैं, हम लोगों के लिए यदि उपदेशों को सुने और उनको काम में लाए तो सहजी भगवान को पाया जा सकता है। भागवत का ये प्रबंध किया गया, व्यवस्था किया गया, 7 आवरण हैं पृथ्वी का आवरण, इस भूमंडल के बाद में 7 आवरण, क्या क्या वो आवरण है? मट्टी का आवरण, जल का आवरण, अग्नि का आवरण, इसके बाद में वायु का आवरण, आकाश का आवरण, मन और बुद्धि का, ये 7 आवरण है, इनको पार किए बिना भगवत राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। एक एक दिन में एक एक आवरण दूर होता जाएगा, इसलिए ये 7 सप्ताह की बात कही गई स्थूल बुद्धि वालों लोगों के लिए जो भागवत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं प्रेम में, उन लोगों के लिए कहा गया एक एक दिन में एक एक आवरण हटेगा। जैसे वो प्रेत था ना, उसका भैया धुंधकारी, वो एक बांस में समा गया जिसमें कि 7 गांठे थी, और एक एक दिन की कथा हुई शाम को जब समाप्त होने पर एक गांठ चट फटी और वो दूसरे में आ गया, ऐसे एक सात दिन में वो भी फट गई, पार होकर के देखा जब विमान उनके लिए खड़ा। उसी तरह से सात दिन में भागवत की कथा कही गई, इसलिए कि एक एक आवरण नष्ट हो, किंतु मूल इसका तात्पर्य बड़े प्रेम के साथ में यदि भागवत की एक कथा भी सुनी जाए, एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का पुनराध, कुछ नहीं है तो कृष्ण नाम उसका सार है, राधा नाम उस कृष्ण नाम का भी सार है, ये राधे कृष्ण नाम किया जाए तो ये भागवत भी पढ़ना हो गया। इसके अतिरिक्त कलयुग में कोई भी हमारी रक्षा करने के लिए संभव नहीं, इस चीज को आप लोग समझेंगे। संसार में रहिए, सब कुछ कहिए, अनाशक्त होकर के कर्तव्य के लिए रहिए और भगवान का नाम कीजिए। उसमें कैसे नाम करना चाहिए उसके लिए ये बतला रहे हैं, नरोध यति जोगो मान जोगो न संख धर्म उद्भव एवज न स्वाध्याय सपो त्यागो निश्चापूर्ति न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदार्सी तीर्थानि नियमाजमा यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगो। सत्संगे नहीं दैतेया जातधाना मृगा खगा गंधर्वा अस्पर्शो नागा सिद्धा चारणा गुह्यका बहु मत्पदम प्राप्ता स्वास्थ्य कया भव वृष पर्वा बड़ी बली बाणी मयाच विभीषण सुग्रीव हनुमानो रिक्षो गजो गृद्धो बणिक पथ व्याध कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञा यज्ञपत्ना अथा। कह रहे हैं देखो, मैं श्रीमद् भागवत का सार कह रहा हूं, कृष्ण प्रेम को लाभ करने के लिए मैं तुमको संक्षेप में बतला रहा हूं। वो बतला रहे हैं देखो, संसार से तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। योग, लोग कहते हैं कि योग करो, योग माने कोई हिमालय पर्वत के पास में कोई योगी आजकल हैं जो अमेरिका और चारों तरफ में उनकी योग की शिक्षा दे रहे हैं, क्या नाम है उनका, महेश योगी, महेश योगी कोई है, बहुत सब योग का ये करें। आजकल जगत देखते हैं कि विश्व में सर्वत्र योग का क्लास चल रहा है। मैं यहाँ पर टहलने के लिए जहाँ जा कभी आता हूँ तो यहाँ वहाँ टहले, देखते हैं कि ऐसा कोई भी मैदान नहीं है जिसमें योग का क्लास नहीं चल रहा है। सांस फुलाओ, सांस निकाल दो, हाथ ऊपर ले जाओ, नीचे ले आओ, फिर ऐसे करो, ये सब योग है। किसके साथ में योग कैसा होता है, एक होता है योग, एक होता है ऋण। जो किसको कहते हैं, दो वस्तुओं के मिलने को कहते हैं योग। आरण का कहते हैं किसे, एक 500 रुपया है उसमें से 100 रुपया निकाल तो कितना बचा, 400 बचा। और जो एक और एक मिलकर के एक होता है ना, एक पर एक रखने से 11 होगा, किंतु एक से एक को जोड़ दो तो एक ही हुआ ना। बहुत से लोग कहते हैं भारतवर्ष में बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग, एक में एक को जोड़ो तो एक ही होता है, कौन कहता है, अद्वैतवादी लोग कहते हैं, शंकराचार्य जी के वो कहते हैं एक और एक एक ही होता है, किंतु ऐसा होता नहीं। शंकराचार्य जी की एक बार मैया बगीचा लगाया बैंगन का, उसमें हजारों बंगल बड़े सुंदर सुंदर बैंगनी रंग के झूल रहे हैं, लोभ किसी को आ जाए तो। एक दिन उसके घर में अतिथि कुछ आए संत लोग, मैया ने कहा बेटा तुम बगीचे से वो खेत से 10-15 बैगन अच्छे अच्छे ले आ, कोई सुनो सो मत, आंख मत बंद करो, योगाभ्यास करने से नींद आ जाए, कलयुग में ये नींद आ जाना ही योगाभ्यास है। तो मैया ने कहा जले आओ। शंकराचार्य अभी छोटा 5 वर्ष का बच्चा, अभी पढ़ रहा है कंग खंग ये सब पढ़ रहे हैं संस्कृत के, गच्छति तीतः अंति सीतः थ निवह म इत्यादि पढ़ रहे हैं। वो गया बगीचे में, बड़ा बुद्धिमान लड़का, 11-12 वर्ष की उम्र में विश्व में चारों तरफ से सब बड़े बड़े पंडितों को परास्त, किंतु एक भी भक्त पंडित को नहीं, किनको, योगी ज्ञानी कर्मी इन सबको हराया। तो वो गया बैंगन लाने के लिए, तो एक बैंगन देख करके ले आया। मैया कहिए बेटा क्या बात, बैगन खेत में नहीं है, भैया जरूर है, तू एक ही लाया, एक ही था तो क्या रात में चोरी हो गई, इतने बैगन थे, दौड़ करके कुछ डर करके गई देखा कि चारों तरफ में एक एक पेड़ में हजारों हजारों सब बैगन झूल रहे हैं। कहे बेटा तुमने एक ही क्यों लाया? तो मैया तुमने कहा था जब बैंगन लाने के मैं बैंगन में गया तो देखा एक 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 सब मैंने देखा तो एक ही एक, दो तो मैंने देखा ही नहीं। तो उसने कान पकड़ा और एक थप्पड़ लगाया, बोले ये एक के बाद में दो नहीं आता, दो के बाद में तीन, ये मास्टर ने तुमको नहीं पढ़ाया, बस एक 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 अहम एकम एव अद्वितीयम, बस एक ही वस्तु है, ब्रह्म है सब। ये बात गलत है। यदि भक्ति चाहिए, भागवत को समझना है, तो इस विचार को छोड़ना पड़ेगा। बहुत मिल करके तब एक होता है। जैसे राष्ट्रपति हमारे यहां एक है ना, तो अब दूसरा कोई है नहीं ना, मंत्री लोग नहीं है 500-600, अब परिषद नहीं है, घर नहीं है, प्रजाएं नहीं है, एसपी नहीं है, एजी नहीं है, या कमांडर नहीं है, सेनाएं नहीं है, भारतवर्ष में कितने कितना क्या क्या चीज ये सब नहीं है, सब मिला करके जैसे एक राष्ट्रपति होता है, एक राष्ट्र का संचालन करने वाला, ऐसे ही सब मिला करके जीव जगत अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सब मिला करके एक भगवान शब्द होता है, सबके वो मालिक है। इसलिए एक में बहुत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन एक में बहु। यहां पर एक धर्मशाला है, मंगल क्या मंगल धर्म सनातन धर्म, एक बड़ा भारी हॉल घर है, उसमें सभी जितने लोग हैं मथुरा वृंदावन से साधु संत लोग आए हैं और यहाँ के श्रद्धालु लोग उसमें जाकर के मिले हैं। आप लोग सभी मिल करके हम लोग एक हो गए, न कि एक दो तीन चार पाँच छः 600-700-800-1000 आदमी हैं, मिलते गए आते गए संख्या बढ़ती गई। इसलिए एक ही नहीं, ये भगवत भक्ति में बाधक है। इसलिए इस विचार को छोड़ करके, मायावाद और द्वैतवाद को छोड़ करके, ये योग की जरूरत नहीं है। योग जरूरत है इसलिए पहले है कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग, इसके बाद में भक्ति योग, इस योग की जरूरत है भगवान से मिलने के लिए। योग हम भगवान के साथ में मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे इस भावना के साथ में, आजकल ऐसा कोई योग नहीं। इसलिए कलयुग में योग के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते। हाथ पैर के कसरत से, गर्दन के कसरत से, पैर के कसरत से, एक आदमी एक पैर को नीचे रख करके दूसरा पैर यहां तक उठाया, मजे वाह वाह ताली बज गई, क्या हुआ? तो इसने पैर उठा करके एकदम बराबर कर दिया, तो जैसे लकड़ी बराबर समतल होती है, क्या हो गया? एक आदमी ने पानी पर चलना सीख लिया और गंगा को पार कर गया, ताली बजने लगी, मुझे महात्मा यदि कोई है तो ये है, पानी के ऊपर में चला। एक बूढ़ा था हमारे जैसा, उसने कहा जी उनको बुलाया, महात्मा जी सुनो सुनो सुनो, तुम जब पानी पर चलाना, ये तो बड़े भारी आप योगी हैं, पानी के ऊपर मैं आदमी नहीं चल सकता, वो तो डूब जाएगा। तो आपने आज सचमुच में दो पैसे का काम किया। दो पैसे का कैसे? मैं दो पैसे में नौका में जाता हूँ, आते चलाता हूँ, तो तुमने इतना दिन तक विद्या सीखा, योग सीखा, और ये पानी से उस पार एक लकड़ी के नाव पर दो पैसे में चले जाते हैं, चले आते हैं, भाई यही तो तुम्हारा योग। इस योग से भगवान नहीं मिलेंगे, न सांख्यम, सांख्य योग ये कहलाता है, एक पातंजल योग कहलाता है। मन की निवृत्ति करो, मन को किसी एक चीज में लगाओ, ऐसे यहां पर ले आओ मन को, सीधा बैठ जाओ, बैठ करके रेचक और पूरक करो, करने के बाद में एक तुम्हारा मन नहीं टिकता है तो एक दीवार पर एक बिंदु लगा दो स्याही की, अब से उसी में मन को टिका दो, बस तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा योग हो गया। क्या होगा इससे? भगवान से कोई भी संबंध नहीं। ऐसे योगों से धर्म, धर्म माने वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म की जरूरत है, किस लिए? इसमें साधु संत लोग रहते हैं, गृहस्थ लोग रहते हैं, किंतु संसारिक नियमों को पालन करने के लिए वर्णाश्रम धर्म की जरूरत नहीं है, भगवान के भजन करने के लिए जरूरत है। यदि भक्ति नहीं है उसमें, ठाकुर जी की पूजा नहीं होती, घर में तुलसी जी नहीं है, तुलसी जी का आदर नहीं है, जिस घर में राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं है, शालग्राम नहीं है, श्री राम सीता का मूर्ति नहीं है, उसका पूजन नहीं है, वो घर घर नहीं है। उसको तो जो कहा गया है काने से आप लोग चिढ़ भी जाएंगे, उसको श्मशान कहा गया। इसलिए ऐसे धर्म से जिसमें भगवान की कोई चर्चा नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, स्वाध्याय वेदों के पाठ से भी कुछ नहीं होने का, लाख वेद पाठ करो। हम सुनते हैं वृंदावन में पाठ करते हैं वेदों का, बड़े सुरीले कंठ से माइक 10-20 लगा करके और पाठ करते हैं। करते क्या है पाठ में, ये वेदों के पाठ से चित्त एकाग्र हो सकता है और ये बड़ा भारी धर्म है। शरीर संतुष्ट रहता है, कोई रोग नहीं होगा, वो मरेगा नहीं तो वेद पाठ करने वाले मरेंगे जरूर, इसलिए वेद पाठ करना भी, यदि वेद ही पाठ करना है तो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, और नहीं आता है राधा रमन हरि गोविंद, राधा रमन हरि जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा, जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधे राधे राधे।